ओम शांति। बहुत समय पहले किसी एक राजमहल में एक बहुत बड़ा उत्सव था और उस उत्सव में एक नाटक का आयोजन किया गया था। सारे पात्र तो आ गए थे, परंतु एक छोटी सी 5 साल की कन्या का उसमें कुछ रोल था, तो वो नहीं आ पाई किसी कारण से। तो बिना उस 5 साल की कन्या के वो नाटक नहीं हो सकता था। तो बहुत ढूंढा गया, परंतु कोई ऐसी कन्या नहीं मिली जो वो पार्ट प्ले करे। तो जो रानी थी, उसका 5 साल का बेटा था एक छोटा, तो वो सोचती है क्यों ना मैं अपने बेटे को ही बेटी राजकुमारी बना के उस नाटक में रख दूं। छोटा सा तो है, 5 साल का, उसको लड़की के ड्रेस पहना के, राजकुमारी के ड्रेस पहना के उस नाटक में वही पार्ट प्ले करेगा। तो सबको ये आइडिया बहुत अच्छी लगती है और वो राजकुमार राजकुमारी बन जाता है और उस नाटक में अपना किरदार अदा करता है। और सबको वो नाटक इतना पसंद आता है, बहुत पसंद आता है, और वो जो राजकुमार था वो भी बहुत अच्छे से एक्टिंग करता है, तो सबको बहुत खुशी होती है। तो रानी भी बहुत खुश हो जाती है। तो रानी कहती है कि अभी इसी ड्रेस में, इसी पोज में मेरे बेटे का, राजकुमारी की ड्रेस में एक पेंटिंग निकाला जाए, एक चित्र। तो बहुत प्रसिद्ध चित्रकार को बुलाया जाता है और वो उस राजकुमार का या राजकुमारी का चित्र निकालता है, उसको खड़े रखकर चित्र। धीरे धीरे ये घटना हो जाती है, राजकुमार बड़ा होता है, युवा हो जाता है, 20-25 वर्ष का हो जाता है। तब तक इस घटना को सब भूल चुके हैं। और एक दिन राजमहल में घूमते घूमते एक कमरे का दरवाजा खोलता है, तो जिसमें बहुत पुरानी चीजें रखी हुई होती है। तो राजकुमार को वो चित्र दिखता है, राजकुमारी का, छोटी राजकुमारी का। तो चित्र देखते ही उसे बहुत अच्छा लगता है वो चित्र, और बाद में वो देखता है नीचे तारीख। तारीख से वो अंदाजा लगाता है कि ये राजकुमारी अभी मेरे ही उम्र की बड़ी हो गई होगी, क्योंकि तारीख जो लिखी है उस हिसाब से राजकुमारी अब लगभग मेरी ही उम्र की होगी। और धीरे धीरे उसे उस राजकुमारी से प्यार हो जाता है। कौन सी राजकुमारी से? तो चित्र। फिर धीरे धीरे इतना प्यार बढ़ जाता है कि उसे कुछ अच्छा नहीं लगता, केवल उस राजकुमारी को ही देखते रहता है। और फिर वो खोजना चालू करता है उस राजकुमारी को, पूरे शहर में, गांव में, सब जगह बहुत ढूंढता है कहीं वो राजकुमारी मिल जाए, पर कहीं नहीं मिलती। धीरे धीरे उदास हो जाता है, धीरे धीरे उदास होता है, मन नहीं लगता भोजन में, राजपाट, राजकार्य, किसी चीज में अच्छा नहीं लगता। दिन रात राजकुमारी का चिंतन, क्योंकि प्यार हो गया है राजकुमारी से। जब तक राजकुमारी नहीं मिलेगी कोई चैन नहीं। तो उदास उदास अकेला रहता है, किसी से बात नहीं करता, केवल राजकुमारी के स्वप्न देखता है कि कब मुझे राजकुमारी मिल जाए और मैं उससे शादी करूं। तो जो महामंत्री होते हैं वो एक दिन देखते हैं और पूछते हैं क्या हुआ? बोलता है कुछ नहीं। महामंत्री कहते हैं नहीं, कुछ तो जरूर है, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। तो जब मुख्यमंत्री ऐसे कहते हैं कि मैं मदद कर सकता हूं, तो उसको थोड़ा लगता है इनको बता सकते हैं, शायद यही ढूंढ के लेके आ जाए राजकुमारी को। तो वो कहते हैं मुझे प्यार हो गया है, एक राजकुमारी से। तो मंत्री पूछता है उसका नाम क्या है, वो कहता है मुझे नाम पता नहीं। फिर मंत्री पूछता है वो रहती कहाँ है, वो कहता है ये भी मुझे नहीं पता। तो मंत्री को आश्चर्य होता है, वो कहता है फिर तुमने उसे देखा कहाँ, तो वो ले जाता है और वो चित्र दिखाता है। तो मंत्री कहता है ये तो बहुत छोटी कन्या है, पर राजकुमार कहता है वो तारीख पढ़ो नीचे, ये कन्या अब मेरी ही उम्र की हो गई होगी और मुझे इसी यही चाहिए। तो मंत्री को एकदम से याद आता है, क्योंकि वो जो बचपन में फेस्टिवल हुआ था उस टाइम पे मंत्री भी था। तो मंत्री जब देखता है तो एकदम उसे याद आता है, अरे ये तो यही राजकुमार है, और ये राजकुमारी नहीं है, ये राजकुमार है। और वो उस राजकुमार से कहते हैं और सारी घटना सुनाते हैं कि ये जो चित्र है किसी राजकुमारी का नहीं है, ये तुम्हारा ही चित्र है। और जैसे ही उसे सत्य का ज्ञान होता है, अब तक इतने महीनों का उसका मोह, उसका डिप्रेशन, उसका फ्रस्ट्रेशन, उसका इन्फैचुएशन जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, वो सब एक क्षण में समाप्त हो जाता है। अब उसे कोई राजकुमारी नहीं चाहिए, क्योंकि उसे पता चल गया ये मैं ही हूं। उपनिषद के वाक्य है तत्वमसि, तुम वो हो, तुम ये देह नहीं, न च भाति भूत संघम। जैसे ही आत्मा को पता चलता है कि मैं ये नहीं, ये जो फंसा हुआ व्यक्ति है ये नहीं, मैं वह स्वतंत्र आत्मा हूं, तद ब्रह्म निष्कलमहम न च भाति भूत संघम, मैं वह निराकार आत्मा हूं, मैं वह शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं वह परम पवित्र आत्मा हूं, मैं यह देह नहीं। और जैसे ही ज्ञान हो जाता है एकदम से क्या होती है, आत्मा जाग जाती है। किससे जागती है? अज्ञान से, नींद से। जैसे वो राजकुमार कितना दुखी था, उदास था, ढूंढ ही रहा था, पर जिस दिन उसे पता चला सत्य का, जाग गया। तो ऐसी जागृति हमें अपने अंदर लानी है, ऐसी ज्ञान की जागृति आ जाए कि सारा मोह नष्ट हो जाए। जागो युवा जागो। तो आज हम इस विषय पर थोड़ी चर्चा करेंगे। संसार के लोग सो रहे हैं, एक है स्थूल निद्रा, एक है अज्ञान की निद्रा। स्थूल निद्रा में सभी सोते हैं, संसार की आत्माएं अज्ञान निद्रा में सो रही है, परंतु ब्राह्मण भी सो रहे हैं, जिन्होंने भगवान को पा लिया, भगवान को जान लिया, तीनों लोकों का ज्ञान जिसके पास है, जो दूसरों को ज्ञान सुनाते हैं, जो दिन रात याद, सेवा, धारणा, योग, ज्ञान का मनन भी करते हैं, परंतु बीच बीच में नींद आ जाती है, विस्मृति हो जाती है। तो आज हम ऐसी श्रेष्ठ पुरुषार्थी आत्माओं की, साधारण पुरुषार्थी आत्माओं की नहीं, श्रेष्ठ पुरुषार्थी आत्माओं की निद्रा क्या है और उस निद्रा से कैसे जागे, उसकी चर्चा करेंगे। ऐसी 10 प्रकार की निद्रा, जिसमें एक श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा सो रही है। अज्ञान निद्रा से तो उठ गए, स्थूल निद्रा आवश्यक है बीच बीच में, परंतु ऐसी कुछ नींद है, तंद्रा है, स्लीप है, स्लंबर है, मूर्छित अवस्था है कि जिससे संपूर्ण रीति से जागना है, और जब तक नहीं जागते तब तक उस राजकुमार की तरह दुखी, उदास, मजनू की अवस्था, उसको लैला मिली नहीं रही है, क्या करेगा। सबसे पहली निद्रा है विस्मृति की निद्रा, स्लीप ऑफ फॉरगेटफुलनेस, स्लीप ऑफ ऑब्लिवियन, विस्मृति की निद्रा। अज्ञान निद्रा से तो जाग गए, परंतु विस्मृत है ब्राह्मण आत्मा कि मैं हूं कौन, मेरे कर्तव्य क्या है, मुझे करना क्या है, व्हाट आर माय रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अमृत वेला उठते ही संसार की दुखी आत्माओं की पुकार सुनाई दे, अशांत आत्माओं की चीख, परेशान आत्माओं की चित्कार, दुख के आलाप, भक्तों की पुकार, प्रार्थनाएं, क्या ये सब हमें सुनाई दे रहा है? क्या हम ऐसे जागे हैं या विस्मृत है, भूले हुए है, भूल की निद्रा, कुछ याद नहीं, करना इतना सारा है। अमृत वेला उठा, योग किया और काम पूरा हुआ। हम आधार मूर्त और उद्धार मूर्त है संसार की आत्माओं के, अनिद्रा के शिकार है लोग, लोगों को नींद नहीं आती है, परेशान है, दुखी है, उदास है, मन में व्यर्थ चक्कर घूमता है, हमें उन्हें मुक्त करना है। और यदि हम ही दुखी है और उदास है और परेशान है तो उनको मुक्त कौन करेगा? ये विस्मृति है। बाबा ने कहा है तुम्हें सारे जग को जगाना है, सारे संसार के कल्याणकारी हो, एक आत्मा के नहीं, एक परिवार के नहीं, एक सेवा केंद्र के नहीं, एक राज्य के नहीं, एक देश के नहीं, एक प्रांत के नहीं, एक खंड के नहीं, सकल विश्व के। इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतना बड़ा काम हमें करना है और हम विस्मृति में। सेवा केवल स्थूल सेवा नहीं, केवल प्रोग्राम आयोजन करने वाली सेवा नहीं, सूक्ष्म सेवा, मनसा सेवा, प्रकृति को पावन करने की सेवा, क्या ये कर्तव्य याद है या भूले हुए? भटकती हुई आत्माओं को ठिकाने लगाने की सेवा, क्या ये कर्तव्य याद है या भूले हुए है? असंख्य कर्तव्य है। भक्तों को साक्षात्कार कराने की सेवा, संसार की आत्माओं को भगवान से मिलाने की सेवा, ब्राह्मणों का जो किला है उन ब्राह्मणों को मजबूत करने की सेवा, ताकि इस किले से कोई भी बाहर ना जाए। किसी वरदान में बाबा ने कहा था ब्राह्मणों का संगठन में ऐसे वाइब्रेशन हो, ऐसा करंट हो कि इस किले में इलेक्ट्रिसिटी हो, कोई भी इस इलेक्ट्रिसिटी से बाहर उधर ना जाए, तो अगर कोई जाए तो उसे करंट लग जाए, और अंदर ऐसा जबरदस्त करंट कि अंदर फेंका जाए वापस। सर्कल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, यहां से कोई डिस्टर्ब होकर बाहर ना जाए। ब्राह्मणों की संभाल, ब्राह्मणों की पालना, संसार की आत्माओं की संभाल, संसार की आत्माओं की पालना। तुम जगत पिता हो, जगत माता हो, तो स्वयं को जगाना है किससे? विस्मृति की निद्रा से। याद दिलाना है मुझे करना क्या है, और वो याद आएगी मुरली से, वो याद आएगा मुरली के चिंतन से, वो पॉइंट्स मिलेगी अव्यक्त मुरलियों से। तुम्हारे महान कर्तव्य तुम्हें पुकार रहे हैं। आज बाबा को स्थूल सेवाधारियों की कम आवश्यकता है। एक को बुलाए तो सब आ सकते हैं, परंतु सूक्ष्म सेवाधारी बहुत कम है, जो अपनी श्रेष्ठ शक्तिशाली स्थिति से यज्ञ की और विश्व की पालना करते हैं। तो सबसे पहली निद्रा है विस्मृति, दूसरी निद्रा आलस्य की निद्रा, स्लीप ऑफ लेजीनेस। इतनी सारी चीजें करनी बाकी है, एक लिस्ट बनानी है, रिमेनिंग ड्यूटीज, रहे हुए कर्तव्य क्या क्या है, इससे पहले कि हम शरीर छोड़ दें, इससे पहले कि सृष्टि का विनाश हो जाए, अपने आप को जगाना है आलस से। क्या हमने अपने आप को संपूर्ण निर्विकारी बना दिया है? यदि नहीं तो ये भी आलस्य है। क्या सभी कमजोरियों से मुक्त हो गए? यदि नहीं तो ये भी आलस्य है। अमृत वेला यदि नींद है तो आलस, मुरली में मन भटकता है तो ये भी आलस्य है। मुरली पढ़ने की इच्छा ना होना आलस, मुरली चिंतन करने की इच्छा ना होना आलस, योग बैठकर योग ना करना आलस, स्थूल ज्ञान सुनाना, स्थूल सेवाएं करना, सभी कर रहे हैं। सूक्ष्म अपनी दिनचर्या को एक्यूरेट रखना, नहीं रखना ये आलस है। अभी तक दिनचर्या को सेट नहीं किया है, आलस है। रोज अव्यक्त मुरली का स्टडी नहीं कर रहे, ये भी आलस्य है। आलस्य अर्थात केवल जाकर सो जाना नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें ना करना आलस्य है। तो इस निद्रा से भी खुद को जगाना है। एक संत थे, शायद महाराष्ट्र के कोई संत, वो 50 लोगों के साथ तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे, तो उनको एक चोर मिल गया। उस चोर ने कहा कि मुझे भी आपके साथ जाना है, मैं इस चोरी की आदत से छूटना चाहता हूं। 2 मास की यात्रा है, भारत भ्रमण तीर्थ यात्रा, तो मुझे भी साथ ले लो। पर वो बहुत पक्का चोर होता है, साधारण चोर नहीं, बहुत सीजन्ड चोर। तो सारे लोग कहते हैं नहीं नहीं इसको मत लेना, नहीं तो यहां ये चोरी करना चालू करेगा। तो संत सोचने लगते क्या किया जाए, ले या ना ले। तो चोर बहुत कहता है नहीं मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मुझे ले लो, मेरा भी कल्याण करो, सारे विश्व का कल्याण करते हो, कल्याण की तो मुझे जरूरत है, ये जो 50 लोग हैं उनसे। तो संत कहते ठीक है तुम आ जाओ, पर एक शर्त पर, जब तक तुम हमारे साथ नहीं रहोगे 2 मास चोरी नहीं करना। तो चोर कहता है ठीक है 2 मास के लिए बिल्कुल चोरी नहीं करूंगा। तो उसको ले लिया जाता है। रात होती है, सारे लोग एक जगह रुकते हैं, और दूसरे दिन उठते ही कोई कहता है मेरा पर्स कहाँ है, कोई कहता है मेरी किताबें कहाँ है, कोई कहता है मेरा सामान कहाँ गया, हलचल हो जाती है पूरी। परंतु थोड़े ही देर में हर एक को अपनी अपनी चीज मिल जाती है। जिसकी किताब एक हो गई वो दूसरे की किताब, दूसरे की झोली में किताब रखी है, चोरी कुछ नहीं हुआ। जिसका सामान चोरी हो गया था वो किसी और की झोली में रखा था सामान, तो क्योंकि चोरी हुई नहीं तो बात वहीं खत्म हो जाती। फिर और चलते हैं, रात होती है, फिर सोते हैं, फिर दूसरे दिन कई लोग कहते हैं अरे मेरे कपड़े कहां गए, कपड़े गायब। कोई कहते हैं मेरा इसमें कोई स्थूल सामान था वो कहां चला गया, किसी की चाबी गुम हो गई, पर थोड़े देर के बाद देखते हैं ढूंढते हैं यहां वहां तो एक दूसरे की बैग में सामान मिल जाता है, तो चोरी हुई नहीं क्योंकि सबको अपना अपना सामान मिल गया। तो संत को लगता है ऐसा क्या हो रहा है, तो वो एक दिन रात में जागते हुए बैठते हैं और जैसे ही जागते हुए बैठते हैं देखते हैं आधी रात होती है, वो चोर उठता है, जो चोर साथ में है, और वो एक की झोली से सामान निकालता है और दूसरे की झोली में डालता है, सारे का सामान इधर से उधर कर देता है और फिर सो जाता है। तो दूसरे दिन सुबह संत उस चोर को बुलाते, इधर आओ, तुमसे कहा था कि तुमको चोरी नहीं करनी है और तुमने वादा किया था। तो चोर कहता है मैंने चोरी न करने का वादा किया था, चीजों को एक्सचेंज इधर उधर करने का वादा थोड़ी ना नहीं किया था, नहीं करने का, और मेरी इतनी पुरानी आदत है एक दिन में थोड़ी जाएगी, जैसे ही रात होती है हलचल हो जाती है, बिस्तर पे मैं सो नहीं सकता रात में, कुछ ना कुछ इधर से उधर जब तक ना कर दूं नींद नहीं आती है। तो चोरी तो गई पर हेरा फेरी नहीं गई, चोरी करना तो बंद कर दिया पर अभी भी सामान इधर से निकाला उधर डाला, उधर से निकाला उधर डाला। और वो कहता है ये मेरी प्रैक्टिस भी तो जरूरी है ना, क्योंकि 2 मास के बाद तो मुझे चोरी वापस चालू करनी है, इसलिए प्रैक्टिस तो चाहिए कि नहीं। तो वो कहता है इतना मुझे कंसेशन दे दो आप बस। ये कहानी हम इसलिए बता रहे हैं कि विकारों को तो छोड़ दिया स्थूल, परंतु इधर से उधर करना अभी भी चालू है, चोरी पूरी गई नहीं है। उसने वादा किया था चोरी छोड़ दूंगा, चोरी तो छोड़ दी पर सामान इधर से उधर अभी भी डाल रहा है, यह भी चोरी ही है। विकारों के सूक्ष्म अंश अब तक हमारे अंदर हेराफेर कर रहे हैं, अर्थात ये भी आलस्य है। तो पहली निद्रा है विस्मृति की निद्रा, दूसरी निद्रा है आलस्य की, तीसरी निद्रा है गफलत की निद्रा। गफलत अर्थात ब्लंडर, मिस्टेक, बड़ी भूल। भगवान का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त हुआ परंतु फिर भी भूले करना चालू है, छोटी छोटी भूल, छोटा छोटा श्रीमद का उल्लंघन, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है, कभी कुछ देख लिया जो नहीं देखना चाहिए, कभी कुछ पढ़ लिया जो नहीं पढ़ना चाहिए, कुछ सुन लिया जो नहीं सुनना चाहिए, कुछ ना कुछ गफलत, मिस्टेक हो रही है। मुरलियों में आता है बाप आए हैं अभूल बनाने के लिए, और रोज कुछ ना कुछ मिस्टेक, भूले हो रही है। और भूल व्यक्ति तब करता है जब बेहोश हो जाता है, मूर्छित, अनकॉन्शियस। यदि कोई यहां से चल रहा हो, ठीक है, यहां एक गड्ढा है, गड्ढे में गिरेगा, होश में है, पूरा देखते देखते चल रहा है, जानबूझ के कोई गिरेगा क्या? हां, परंतु उसको नींद आ रही है या बेहोश है या पी लिया है, मूर्छित, नशा है, तो गिर सकता है। परंतु जो जागा है, जो होश में है, जो चौकस चौकन्ना है, कंप्लीट अवेकन्ड स्टेज में है, एनलाइटन्ड स्टेज में है, तो उसमें नहीं गिरेगा। यदि हम गिर रहे हैं और यदि हमसे भूले हो रही है, यदि हमसे गफलत, मिस्टेक्स हो रही है, ब्लंडर्स हो रहे हैं, इसका मतलब हम जागे हुए नहीं है। कौन सी भूले हैं और क्यों होती है, और क्यों क्यों बार बार वही भूल होती है? महाभारत में उदाहरण है यक्ष और पांडवों का। 5 पांडव जब वनवास में होते हैं, प्यास लगती है, नकुल जाता है, पानी पीने लगता है तो यक्ष प्रकट होता है। वो कहता है मेरे प्रश्न का उत्तर दो, उसके बाद में ही पानी पीना। वो नहीं देता है, मर जाता है। दूसरा सहदेव, अर्जुन, भीम, चारों ही मर जाते हैं। युधिष्ठिर आता है, युधिष्ठिर अपने भाइयों को मरा पड़ा देखकर दुखी होता है, पानी पीने लगता है तो यक्ष कहता है रुको पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, उसके बाद में ही पानी पीना, और यदि तुमने उत्तर दिया तो तुम्हारे पांचों चारों भाई जीवंत हो जाएंगे। बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते, एक प्रश्न उसमें होता है कि संसार में सबसे आश्चर्य की कौन सी बात है। तो युधिष्ठिर उत्तर देता है मनुष्य इतनी भूले रोज करता है परंतु अपनी भूलों से कभी नहीं सीखता। एक ही भूल बार बार करता है परंतु भूल से नहीं सीखता, यही सबसे बड़ी आश्चर्य है। एक के प्यार में फंसता है, उधर से धोखा मिलता है, थोड़ी देर के बाद दूसरे के प्यार में जाके फंसता है, सीखा ही नहीं पहले से। मनुष्य प्रेम की फिलॉसफी को ही समझा नहीं, ह्यूमन लव। एक से बुद्धि गई फिर दूसरा, दूसरे से गई तीसरा, भटकते रहता है। तो तीसरी निद्रा है गफलत की निद्रा, चौथी निद्रा है अलबेलेपन की निद्रा, स्लीप ऑफ केयरलेसनेस। काम कर रहे हैं परंतु केयरलेस, एक्यूरेसी नहीं है। सबको बताया है यहां यहां जाना, यहां यहां पहुंच जाना, हर एक सोचता है इतना जल्दी जाने की क्या आवश्यकता। वो उसी तरह है जब राजा ने कहा था कि हमारे गांव के बहुत सभी बहुत अच्छे लोग हैं, प्रजा बहुत ही अच्छी है, ईमानदार है, और जब कहा था, घोषणा की थी ये तालाब को दूध से भर देना है, सब अपने अपने घर का दूध लाकर, तो सबने क्या किया, सबने अपने अपने घर का पानी लाकर डाल दिया, क्योंकि हर एक को लगा एक ग्लास पानी में डालूंगा तो क्या फर्क पड़ता है, बाकी सब तो दूध ला रहे हैं ना। और जब सुबह देखा तो खाली पानी ही था, बस दूध था ही नहीं, क्योंकि हर एक ने सोचा दूसरा दूध लाएगा। अलबेलापन अर्थात केयरलेसनेस, केयरलेसनेस योग में, धारणा में, सेवा में, ड्यूटीज में, कर्तव्य में, हर चीज में, पुरुषार्थ में, तपस्या में, बात करने में, बात करते करते ऐसा कुछ बोल दिया केयरलेस होकर कि बाद में पश्चाताप करते रहे, छोटी सी भूल जीवन भर पश्चाताप, केयरलेसनेस। अपने को इस नींद से भी जगाना है। अगली निद्रा है डिजिटल स्लीप, डिजिटल स्लीप। वो क्या होती है, क्या होती है डिजिटल स्लीप में क्या क्या है मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, सोशल मीडिया, कंप्यूटर, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन गेम्स, ऑनलाइन न्यूज, फोटोग्राफी, और दसवां ई कॉमर्स, ई बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस। ये सारी चीजों में बुद्धि फंसी रहे, डूबी रहे, ये भी एक नींद है। इसका नाम है डिजिटल स्लीप। सारा टाइम फॉरवर्ड, सारा टाइम अननेसेसरी सर्फिंग, सारा टाइम यूट्यूब, व्हाट्सएप, मैसेजेस, फेसबुक, लेन देन, कॉल, लॉन्ग कॉल्स। बहुत अच्छा साधन है, इससे बहुत सेवा हो सकती है, परंतु यही माया का सबसे विकराल और भयंकर रूप भी है, लेटेस्ट फॉर्म है माया का, पता ही नहीं चलता ये माया है, क्योंकि रूप इतना सुंदर है दिखने में, कहीं लिखा भी नहीं है मैं माया हूं। परंतु मोबाइल में लोग डूबे रहते हैं, दिन रात ऑनलाइन गेम्स, ऑनलाइन शॉपिंग। शॉपिंग में एक ही बटन दबाना होता है, बटन दबाया, बाय और आ गई चीज, और दबाते ही रहो, करते ही रहो, करते ही रहो। तो इंटरनेट, सोशल मीडिया, ई कॉमर्स अर्थात बिजनेस, फोटोग्राफी, फोटो ही फोटो लेते रहते हैं दिन रात, और फिर उसको एडिट करते रहते हैं, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉपी, ग्राफिक्स, कलरफुल बनाना, बस वही करते रहना दिन भर, और बना के भेजना दूसरों को, देखो हमारे हैं, 50 फोटो भेजो, पनिशमेंट, देखो सारे फोटो, हमने ये सेवा की। ये भी एक नींद है, इस नींद से भी जागना है, इसका उपयोग केवल ज्ञान योग सेवा, बस उसके अतिरिक्त और किसी चीज के लिए हो रहा है तो सबसे बड़ी माया यही चीज है। तो ये कौन सी स्लीप है? डिजिटल स्लीप से स्वयं को जगाना है, इसके अपने नियम बनाने हैं, इतने से इतना समय तक इसको प्रयोग करेंगे, इंटरनेट जब काम है बस, बाकी ऑफ, जरूरत नहीं है बंद। हजारों ग्रुप्स में ज्वाइन करके रखा है किसी ने, जरूरत है क्या सारे ग्रुप्स में रखने की? एग्जिट, हर दिन नया ग्रुप बनाता है और जबरदस्ती ऐड कर देता है बिना पूछे, और ग्रुप्स में क्या आता है? गुड मॉर्निंग, हैप्पी अमृत वेला, हैप्पी सदगुरुवार, जोक्स, पॉलिटिक्स, एडवर्टाइज, थॉट फॉर द डे भेजना चालू है नॉन स्टॉप, कोई लेना देना नहीं है किसी को, पढ़ने से तो किसी को पढ़ना ही नहीं है, किसी को खाली भेजना है। चक्र है माया का, भयंकर चक्रव्यूह, अंदर घुसता है पर अभिमन्यु की तरह बाहर नहीं निकल सकता, फिर वही मर जाता है। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है, डिजिटल स्लीप, यदि इसमें सोए हैं तो इससे स्वयं को जगाना है, डिजिटल रूल्स और इटिकेट्स बनाने अपने लिए, कितना समय यूज करना, कितना समय यूज न करना, कब स्टॉप करना, ये बता रहना चाहिए, नहीं तो रात के 11 और 12 और 1 भी बज सकता है इसके पीछे, देयर इज नो लिमिट। 9:30 स्टॉप में स्टॉप, 10 o'clock और 10:30 स्लीप, इससे ज्यादा ये एक्सटेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहां से कहां पहुंचा देता है ये। एक बटन दबाया ब्रह्मा कुमार, दूसरा बटन दबाया शूद्र कुमार, जर्नी इतनी फास्ट है। कितने हो गए? 5, छठवा, धन की नींद, वेल्थ, या जिसको कहो लोभ, ग्रीड। बाबा के लिए पैसा चाहिए, सेवा में पैसा लगाना है, इसलिए पैसा कमा रहे, परंतु वो पैसा कमाते कमाते इतने डूब गए कि जिसके लिए कमाया जा रहा है वही भूल गया। संकल्प क्या था कि बाबा के लिए करना है। क्यों करना है? बाबा की सेवा में लगाना है सब, ठीक है, संकल्प बहुत अच्छा है, परंतु दौड़ ऐसी है उसकी कि भागते भागते कहां पहुंच गए, वहां बाबा है ही नहीं, बाबा ही गया, जिसकी सेवा कर रहे हैं वही भूला हुआ है। धन जबरदस्त निद्रा है। संसार यदि छोड़ दिया और कोई यहां है, यहां पर भी धन एक माया है। उसके बाद ज्यादा हमारे पास कम कंपैरिजन। तो छठवां है धन की निद्रा। अगला है फूड, भोजन, स्वाद, टेस्ट, वो भी एक बहुत बड़ी निद्रा है। द्वापर में देखा ना, ब्राह्मण लोग भोजन करने जाते हैं, पेट कैसा होता है उनका? ब्राह्मणों को बुलाते हैं ना संसार में, किस लिए बुलाते हैं? दक्षिणा, भोजन, और कुछ लेके भी जाते हैं साथ में। तो ये भी एक नींदी है, रस में डूबे हुए, स्वाद में डूबे हुए, संयम जहां नहीं, इंडल्जेंस जहां है, सेल्फ इंडल्जेंस, विलासिता, भोग, दिन रात उसी का चिंतन, ये खाऊं या वो खाऊं, अब ये खाया दोपहर में क्या खाना है, मार्ग आत्म संयम का है, सेल्फ कंट्रोल का। इसके लिए सिक्स या सेवेंथ, स्लीप ऑफ टेस्ट, स्वाद की नींद। एट्थ, स्लीप ऑफ लस्ट, काम की निद्रा। काम विकार एक जबरदस्त नींद है, नशा है, जो उसमें डूबते हैं बाहर निकलना बहुत कठिन। क्यूरियोसिटी, उत्कंठा, क्या है ये? क्यूरियोसिटी ही आत्मा को फंसा देती है। एक साधु जो प्रवचन करता है और कहता है काम महाशत्रु है, आदि मध्य अंत दुख देता है, सिनेमा बिल्कुल देखना नहीं चाहिए, पर वो देखता है, जिनके सामने प्रवचन करता है वो सब जा के सिनेमा देखते हैं, तो उसके मन में आता है मैं इतना बोलता हूं आखिर फिर भी ये लोग सब सिनेमा देखने जाते हैं, आखिर कुछ तो होगा, मुझे भी देखना है, पर कैसे देखूं अब, वो मुश्किल है। इतने बड़े पहुंचे हुए योगी और हजारों के सामने प्रवचन करते, पर जिनके सामने प्रवचन करते उनको ये एक ही बात बताते, काम महाशत्रु है, बिल्कुल सिनेमा का त्याग कर दो, पर बाद में देखता है सब छुप छुप के सिनेमा देखने जाते, तो उसको लगता है मैं भी तो जाऊं, कुछ तो बात होगी, मेरा इतना पावरफुल प्रवचन सुनने के बाद भी लोग जाते हैं, मतलब सिनेमा मेरे प्रवचन से ज्यादा पावरफुल होगा। सिनेमा घर में जाते हैं तो वो मैनेजर से पूछता है ऐसा कोई दूसरा पीछे का द्वार है क्या जिसमें कोई मुझे ना देखे और मैं सिनेमा देखने पहुंच जाऊं। ये साधु संतों की अवस्थाएं हैं, राजा से लेके रंक तक, ऊंच से लेके तो नीच तक, साहूकार से लेके तो गरीब तक, किसी को भी नहीं छोड़ा है। और ये नींद है एक जबरदस्त नींद, और ये टूटेगी कैसे? पवित्रता के समान से, जैसे अभी यहां अभ्यास किया था, एक वर्तुल बन गया था, एक पवित्रता का कुंड, ऐसा पवित्रता का कुंड अपने इर्द गिर्द बनाना है। ऐसे पवित्रता के समान का अभ्यास, ज्ञान का चिंतन, ज्ञान का मनन, ज्ञान की चर्चा और सबसे महत्वपूर्ण पवित्र आत्माओं के संग में रहना है। जितने कुमार यहां से गए हैं, क्यों गए हैं? कुसंग के कारण। उनको ऐसे मित्र मिल गए कि जिन्होंने खींच लिया उनको। पहले बहुत अच्छे कुमार थे, फिर संसार में गए, फिर एक के दो से तीन और चार हो गए, और अभी वापस आ गए ज्ञान में अपने बच्चों को लेकर, और कहते ये बच्चे भी शिव बाबा के हैं, और कहते हैं ये मेरी युगल है ना, इसी के लिए मैं गया था, इसको ज्ञान में लाने के लिए। इसको बाबा का बच्चा बनाने के लिए। पहले अकेले चलते थे, अभी वो गेम होता है ना बोरी वाला, एक पैर एक झालेगा, दूसरा डालेगा और बांधेंगे पैर और भागो। पता है ये गेम, बोरी में पैर डालना, दूसरा डालेगा, दोनों के पैर बांधेंगे और भागेंगे। अभी वही हालत है दोनों की। पहले स्वतंत्र थे, अच्छे से भाग रहे थे, अभी साथ साथ भाग रहे हैं, हद्दार 10 बार गिरते हैं नीचे, कभी वो गिरता, कभी ये गिरती, कभी दोनों साथ साथ गिरते। ज्ञान कटार चाहिए बीच में, नहीं तो काम अग्नि जागेगी। काम जबरदस्त नींद है, नशा है, मूर्छा है, स्टेट ऑफ डिलीरियम, अनकॉन्शियसनेस, फेंटिंग। इस नींद में नहीं सो जाना। अगर सो गए हैं तो उन आत्माओं का संग करो जो जागे हैं, उन आत्माओं का संग करो जो ब्रह्मचारी है और अपने ब्रह्मचर्य में बहुत पावरफुल है। उनके संग का ही रंग लगेगा और बाहर निकल जाएगी आत्मा। नहीं तो ये संसार पूरा काम से भरा हुआ है। चैनल, टीवी, मीडिया, न्यूज़पेपर, बुक्स, मैगजीन, सब जगह क्या है? काम, दूसरा कुछ है ही नहीं। कुट कुट के काम भरा है वातावरण, वायुमंडल में वासनाएं घूम रही है। सारा संसार उसी में डूबा है, और यहां भगवान कह रहे हैं संपूर्ण पवित्रता। कितनी कठोर साधना चाहिए, ढीली ढीली साधना करके नहीं होगा। मुरली भी सुन रहे और कमरे में जाके मूवी भी देख रहे हैं, तो पवित्रता होगी? मुरली के गीत भी सुन रहे, बाबा के गीत भी सुन रहे और घर में जाके रोमांटिक सॉन्ग सुन रहे हैं, तो पवित्रता होगी? मुरली भी पढ़ रहे और संसार की मैगजीन भी पढ़ रहे, तो पवित्रता होगी? मूवी मुरली भी पढ़ रहे, ब्राह्मणों का संग कर रहे और यहां से जाने का बाद अपने मित्रों के साथ पिकनिक भी जा रहे हैं, तो पवित्रता होगी? यहां का ब्रह्मा भोजन भी खा रहे पर बाहर जाने के बाद बाहर का आइसक्रीम, बाहर की बिस्किट्स, मशीन मेड वो भी खाना चालू है, तो पवित्रता होगी? इतनी सस्ती है क्या? बहुत महंगी चीज है पवित्रता, वेरी एक्सपेंसिव कमोडिटी प्यूरिटी। बहुत त्याग करना पड़ता है, बहुत तपस्या करनी पड़ती है, तब मिलती है। मोस्ट एक्सपेंसिव कमोडिटी, मोस्ट एक्सपेंसिव फूड आइटम प्यूरिटी, मोस्ट एक्सपेंसिव गिफ्ट। कितने हुए? 8, 9, लास्ट। स्लीप ऑफ।
एक ऐसी चीज जिसको ब्राह्मण आत्मा
करना तो नहीं चाहता है परंतु थोड़ा थोड़ा करता ही है,
पैशन, स्लीप ऑफ फैशन, फैशन, मेकअप, श्रृंगार, हेयर डाई, क्रीम, पाउडर, मेहंदी, टैटू,
नेल पॉलिश, बहने थोड़ी ज्यादा करती है, भाई कम करते, हेयर कट, स्टाइल, शूज, बेल्ट्स, स्टाइलिश, कलरफुल क्लोथ्स, स्टाइलिश, यहां जब तक है तब तक ठीक, यहां से बाहर जाते ही फैशन चालू। कारण बाबा ने तो कहा है ना, कलर ड्रेस भी पहनो और सेवा करो। बाबा ने ऐसा थोड़ी कहा है कि व्हाइट ड्रेस ही पहनते रहो, परंतु व्हाइट प्रोटेक्शन है। वो जो सन्यासी होते हैं भगवे वस्त्र पहनते हैं, बौद्ध भंति देखे क्या पहनते हैं, उनके अपने ड्रेस होता है, फिक्स्ड ड्रेस कोड। या ऐसा है कि वो बौद्ध भिक्षु कहीं और चला जाए या ब्रह्मा कुमारीज में आना है तो सोचता है अरे मैं ऐसे पहन के कैसे जाऊं, मुझे तो व्हाइट पहनना चाहिए जैसे वो लोग पहनते हैं। सोचते हैं वही ड्रेस पहन के आएंगे, उनका अपना ड्रेस कोड है और वो ड्रेस उनको याद दिलाता है मैं सन्यासी हूं, ये गृहस्थी है, ये अलग मैं अलग। और यहां पर कोई कोई बैच तो पहनते पर इतना छोटा सा बैच इधर यहां पे, बटन बैच, ताकि किसको पता भी ना चले और कोई पूछे बैच कहां है तो ये है, बाकी इधर शर्म लगती है थोड़ी सी, डर भी लगता है, कोई पूछे तो क्या कहेंगे, कोई कह दे अच्छा तुम भी ओम शांति में चले गए, तुम तो अच्छे थे पहले, तुमको क्या हो गया, तुम भी फंस गए। वो जो सरदार जी होते हैं सिख, वो अपनी पगड़ी निकालते हैं क्या, नहीं ना, उनको शर्म लगती है। वो मिलिट्री वाले मिलिट्री का ड्रेस पहन के घूमते हैं, उनको लगता है अरे लोग क्या कहेंगे, ये तो मुझे अपने कैंपस में पहनना चाहिए, बाहर ये नहीं पहनना चाहिए। वो नर्स सड़क से जाती है ड्रेस पहन के हॉस्पिटल, तो उसको लगता है ये मैंने क्यों पहना, यह तो हॉस्पिटल में पहनना चाहिए, उसको डर नहीं लगता। वैसे ये भी हमारा ड्रेस है, बैच भी हमारा ड्रेस है। एक बहन थी, वो कहती थी कि रात में भी फुल ड्रेस में वो सोती है, यदि भूकंप आ जाए अचानक तो, क्योंकि उनके देश में भूकंप आते रहते हैं छोटे छोटे झटके, तो सादगी, सिंप्लिसिटी, बहुत ज्यादा सजावट, दिखावा, शो ऑफ, पॉम्प, भपका, और ऐसे ड्रेस की अगर कोई दूसरा ही आकर्षित हो जाए हमारी तरफ तो, हेयर स्टाइल, आत्मा को सुंदर सुंदर बनाना है ना कि देह को, तो ये भी एक क्या है, नींद। तो ऐसी टोटल कितनी हो गई, 10, 9 की 10। तो लास्ट, स्लीप ऑफ साइट सीइंग, ये देखूं, वो देखूं, इधर घूमने जाऊं, उधर घूमने जाऊं, ज्ञान योग के लिए टाइम नहीं है, दुनिया भर घूमने के लिए बहुत टाइम है, ग्रुप्स बनाओ और जाओ घूमने, और जाते समय और घूमते समय अमृत वेला मिस हो रहा है, मुरली सुनी नहीं सुनी, क्योंकि मुरली सुनने के टाइम पे निकलने का टाइम है, क्योंकि वो जो स्पॉट है सनराइज स्पॉट, उसी टाइम पे सूरज उगता है, वो मिस हो जाएगा नहीं तो। सनसेट पॉइंट पर जाना है तो शाम को निकलना पड़ेगा, योग छोड़ना पड़ेगा। वो पूरी साइट सीइंग की दिनचर्या 3 दिन 4 दिन 7 दिन, उसमें ज्ञान योग सब एक तरफ। वो साइट सीइंग करते ही मृत्यु हो गई तो अंतमति सो गति। हां पिकनिक जाओ, परंतु ज्ञान योग की पिकनिक हो। अगर कहीं गए भी तो पहले योग, फिर कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटी वहां पर हो। खाली खेल पाल किया, मस्ती मौज की और आ गए, वेस्ट, टाइम वेस्ट है। ये भी एक नींद है, साइट सीइंग। बाबा कहते पिकनिक कहां करो, सूक्ष्म वतन में करो। जो सुबह वो बहन ने कितनी अच्छी पॉइंट सुनाई, बाबा मेरा माशूक है, लवर है, वो मुझे रोज घुमाने लेके जाता है, दूर दूर तक घुमाने ले जाता है, कभी सूक्ष्म वतन, कभी परम धाम, कभी सतयुग में। सुना ना सुबह, कितनी अच्छी बात बताई बहन ने, मेरा इतना प्यार करता है मुझे कि रोज गिफ्ट लेके आता है और रोज मुझे घुमाता है, जैसे पति पत्नी को घुमाते हैं वैसे बाबा भी घुमाएगा। तो ऐसी ये 10 स्लीप। पहली किसकी निद्रा, विस्मृति की निद्रा। दूसरी आलस की निद्रा। तीसरा गफलत की निद्रा। चौथा अलबेलेपन की निद्रा। पांचवी डिजिटल स्लीप। छठवी फूड टेस्ट। सातवी धन की निद्रा। आठवीं लस्ट की निद्रा। अगली फैशन की निद्रा। और लास्ट साइट सीइंग। ये सारी एक रीति से नींद है, और इससे व्यक्ति तब जागेगा जब ज्ञान होगा। जैसे उस राजकुमार को जैसे पता चला ये मैं ही हूं, तत्वमसी धाव आर्ट दैट, एकदम से जाग गया। कितना टाइम लगा उसको उसको भूलने के लिए राजकुमारी को। यदि किसी को किसी से प्यार हो जाए और उसको कहो कि इसको भूल जाओ, भूलता है क्या? सारी जीवन भर याद रखेगा। उसकी दूसरी तरफ शादी भी हो गई फिर भी उसको नहीं भूलता है, फर्स्ट लव। ये कैसे भूल गया एक सेकंड में? जितना जोर से ज्ञान का करंट लगेगा, धक्का लगेगा, उतना ही जोर से वो सम्मोहन, वो हिप्नोसिस, वो इल्यूजन, वो भ्रम जाल, मृग मरीची का, रुण्य का पानी, मिराज, बिलो द विप्स, ओयासिस, वो सारा खलास होगा। क्योंकि वो मन में था, भ्रम था, अज्ञान था, मूर्खता थी, निद्रा थी, मूर्छा थी, अनकॉन्शियसनेस, डेलीरियस स्टेट। तो हे युवा जागो। ओम शांति।